पिछले कई एकादशियों से आलवारम की कथा में थोड़ी बहुत हमें छूट ले दी थी, कई एकादशी नहीं यहाँ पर नहीं उपस्थित होने की वजह से कई एकादशियों से कथा नहीं हो पाई, तो पुनः आज से ये कथा आरंभ करेंगे। पिछली बार चौथे आलवार तिरुमल ईसाई आलवार के बारे में चर्चा आरंभ की थी। आपको याद होगा कि यह आलवार दक्षिण भारत या द्रविड़ देश के श्री संप्रदाय के शुद्ध भक्त थे, जो कि द्वापर के अंत में और कली की शुरुआत में रहे। उनकी भविष्यवाणी श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में पाई जाती है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। पहले तीन आलवार, ओइग्याई आलवार, भूतम आलवार और पेय आलवार, इनके बारे में भी चर्चा हो चुकी थी। हम ये सुन चुके हैं कि कैसे ये तीन आलवार एक बार मिले, इनकी पहचान कैसे हुई, और उस दिन के बाद ये तीनों आलवार हमेशा एक साथ भ्रमण किया करते थे, हमेशा कृष्ण कथा में मग्न रहा करते थे। उसी समय भी तिरुमली से आलवार रहते थे। पिछले बार हमने चर्चा की थी तिरुमल ईसाई आलवार के जन्म के बारे में। उनके पिता भृगु ऋषि थे, उनकी माता एक अप्सरा जिनका नाम था कनकांग, और कई साल कनकांग के घर में रहने के बाद कनकांग ने उस बच्चे को एक वन में छोड़ दिया, लेकिन उस बच्चे का कोई आकार नहीं था, केवल मांस का एक टुकड़े के जैसा था, लेकिन भगवान विष्णु ने स्वयं पृथ्वी माता के अनुरोध पर उस बच्चे का पोषण किया, और फिर वहां से एक शिकारी गुजर रहा था जो कि बहुत गरीब था, उसने बच्चे की आवाज सुनी, बच्चे को उठा लिया, और उसके घर में कोई संतान नहीं था, बच्चा नहीं था, इसलिए उसको अपना बना लिया। आश्चर्य की बात यह थी कि बच्चा कुछ खाता नहीं था, कुछ पीता नहीं था, और न ही कोई शौच करता था, और इसी तरह से समय बीतता गया, खबर फैल गई इधर उधर, और पास में रहने वाले एक साधु जो कि ब्राह्मण नहीं थे बल्कि काफी एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो अपने पत्नी के साथ रहा करते थे। ये दोनों काफी वृद्ध हो गए थे, परंतु उनका कोई संतान नहीं था। वो रोज आकर इस बच्चे को दूध पिलाना चाहते थे, इस बच्चे ने केवल ये दूध स्वीकार किया और कुछ भी नहीं खाते थे। तो उस समय उस बच्चे ने इनकी इच्छा जान ली और उनको वरदान दिया कि आपकी मनोवांछा पूर्ण होगी, आपका भी एक संतान होगा। इस बच्चे का नाम कन्नीकन्नन था, और ये कन्नीकन्नन आगे चल के इस आलवार का एक दास और सेवक बनने वाले थे। ये तो इस तरह से 7 साल की उम्र होने पर ये जो बच्चा था जो आगे चल के तिरुमली से आलवार बनने वाले थे, वो घर छोड़कर इधर उधर तीर्थ यात्रा में चले गए। शैव, बौद्ध, योग, अलग अलग पद्धतियों से गुजरे, सब में दक्ष निपुण हो गए, और योग अभ्यास में भी इतने आगे बढ़े कि उनकी काफी कुछ योग शक्ति हुई। एक बार बैठे बैठे वो मौन व्रत का पालन कर रहे थे कि उस स्थान में तीसरे आलवार पे आलवार वहां से जा रहे थे, उन्होंने सुना कि ऐसे कोई योगी यहां पर आए हुए हैं, ये बहुत शक्तिशाली है। तो पे आलवार ने सोचा कि चलो अभी एक और वैष्णव बनाने का मौका, और ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को अगर वैष्णव बनाया जाए तो कितना अच्छा होगा। तो जब आए वहां तो जानबूझकर पे आलवार एक पौधे को जमीन में डाल रहे थे, उसके पत्ते इत्यादि जमीन में डाल रहे थे और उसकी जो मूल है वो ऊपर था हवा में। तो जब इस आलवार ने, तिरुमली से आलवार ने इसको देखा, अभी तक तो आलवार के नाम से जाने नहीं जाते थे वो, तो वो हंसने लगे, बोलने लगे शायद ये आदमी पागल है, तो यही मौका ढूंढ रहे थे। उनका मौन व्रत भंग हो गया तिरुमली से आलवार का। और फिर पे आलवार कहने लगे, मैं पागल हूं या तुम? मैं जो कि परम सत्य भगवान नारायण की सेवा करता हूं, और तुम जो कि नारायण के पोते की सेवा करते हो। नारायण के पोता कौन है? शिव जी। क्योंकि नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के भ्रुकुट से मतलब आंखों के बीच में से शिव जी उत्पन्न हुए, इसलिए उनको ब्रह्मा जी का पुत्र माना जाता है। ऐसे करके उन दोनों के बीच में वाद हुआ और शीघ्र ही तिरुमले से आलवार वैष्णव बन गए। भगवान विष्णु में उनकी तीव्र श्रद्धा उत्पन्न हुई और उनका नाम भक्ति सार दे दिया पे आलवार ने। तिरुमले से आलवार का और एक नाम है महिसार, क्योंकि उनका जन्म महिसार क्षेत्र में हुआ था। तिरुमली से इसलिए कहते हैं क्योंकि उस जगह का नाम अभी तिरुमली से है। और आलवार क्योंकि जो भगवत प्रेम में उन्मत्त थे वो सब आलवार हुए। इस तरह से वैष्णव बनने के बाद तिरुमली से आलवार ने कई ग्रंथ लिखे, दो ग्रंथ जिनमें कई कविताएं थीं। उनके दो प्रमुख ग्रंथों के नाम थे, तमिल में है इसलिए उच्चारण ठीक नहीं होगा, नान मुकान तिरुवंदादी और तिरुचंद विरुत्तम। हमने देखा था कि तिरुवंदादी अंदादी अंत आदि, मतलब एक श्लोक का अंत और उसके बाद वाले श्लोक की शुरुआत एक ही है, एक ही शब्द से होती है, इसलिए अंत और आदि, तिरु अंत आदि। तो इस तिरुवंदादी का नाम है नान मुकाम। इसमें 96 गीत गाए थे तिरुमली से आलवार ने, और इन गीतों में बार बार हर गीत में यही दिखाई पड़ता है, हर कविता में, कि उन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि कैसे श्रीमन नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इस तिरुवंदादी के पहले ही श्लोक में वो घोषणा करते हैं कि मैंने सत्य को पा लिया है, जो पहले किसी को नहीं मालूम था मैं इसकी घोषणा करता हूं, बड़े ध्यान से सुनो, परम सत्य नारायण है, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं शिव शंकर, इसलिए और अन्यों की सेवा छोड़कर श्री नारायण की सेवा स्वीकार करो। इस तरह से उन्होंने भगवान विष्णु या नारायण का गुणगान किया। और दूसरे ग्रंथ में कविताओं में जिनका नाम है तिरुचंद विरुत्तम, इसमें 120 कविताएं हैं। इनमें उन्होंने विशेष करके विशिष्टाद्वैत वेदांत का वर्णन किया है। ऐसे नहीं है कि केवल श्रीपाद रामानुजाचार्य से श्री वैष्णव संप्रदाय का दर्शन आरंभ हुआ, बल्कि श्रीपाद रामानुजाचार्य ने आलवारों के शिक्षणों से, उनके नालायर दिव्य प्रबंधम, उनके दिव्य प्रबंधम से काफी कुछ पाया। हम पहले भी सुन चुके हैं कि आलवारों के जो ग्रंथ हैं इनको नालायर दिव्य प्रबंधम कहते हैं। प्रबंध मतलब संग्रह है और नालायर मतलब 4000। तो इन 12 आलवारों के अलग अलग कविताओं को का संग्रह करके ये नालायिर 4,000 दिव्य प्रबंधम हुए, इनमें से ये दो भी हैं, नानमुकान तिरुवंदादि और तिरुचंद विरुत्तम। तो इस तरह से तिरुमले से आलवार ने ऐसे कई कविताएं लिखे जो कि रामानुजाचार्य के बाद भी कई वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वैष्णव होते हुए भी उन्होंने अपना योगाभ्यास त्यागा नहीं। जब वो एक बार योगाभ्यास में योगासन में बैठे थे, ध्यान में मग्न थे, ऊपर आसमान में से आकाश पथ से चलते हुए एक आकाश जगत के एक प्राणी थे, एक व्यक्ति थे योगी, जिनका नाम था शक्तिहरण। और ये शक्तिहरण एक शेर के ऊपर बैठकर आकाश में से जा रहे थे, और जैसे ही वो ऊपर आए तो जैसे वो तिरुमले से आलवर के ऊपर आए तो वो शेर वहीं रुक गया आसमान में। अब ऐसे योगी लोग ये सब कर सकते हैं, एक छड़ी के ऊपर बैठ के उड़ना और एक चटाई के ऊपर बैठ के उड़ जाना। पश्चिम देशों में जो पहले लोगों के मन में विचार था भारत के बारे में, वो ऐसे ही था, एक योगी है जो ऐसे कांटों के शैया पर लेटा हुआ है, या ऐसे योगी एक चटाई के ऊपर बैठ के आसमान में उड़ रहा है। तो पहले अमेरिकी लोग जो है ऐसे ही सोचते थे भारत के बारे में। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसे योगी हुआ करते थे यहाँ। तो जब शेर वहीं पर रुक गया ऊपर आसमान में, तो उनको पता नहीं चला कि क्या हुआ। तो नीचे उतर आए, देखा कि इस योगी की वजह से होगा, तो इस योगी की परीक्षा करना चाहता था ये शक्तिहरण। तो जब तिरुमली साई अलवार के पास आया तो वो शक्तिहरण कहने लगा कि अरे माननीय योगी, आपके कपड़े देखो कितने फटे हुए हैं, गंदे हैं, ये लो एक दिव्य वस्त्र मैं प्रदान करता हूं आपको, ये स्वीकार करो। तिरुमली साई अलवार ने तुरंत अपने योग शक्ति से एक ऐसा अद्भुत वस्त्र उत्पन्न किया जो कि केवल रत्नों से बना हुआ था, अनमोल रत्नों से। आश्चर्यचकित हो गया शक्तिहरण और दोबारा परीक्षा लेना चाहा, कहा कि देखो ये जो मेरे पास माला है ये ले लो, ये रुद्राक्ष पहन लो, पहनकर देखो क्या चमत्कार होता है। तो उस समय तिरुमले से आलवार ने अपने गले से जो पद्माक्ष माला और तुलसी माला थी वो उतारी और उनको भेंट दिया, और जैसे ही भेंट दिया वो दोनों मालाएं तुरंत अनमोल रत्नों के मालाएं बन गए। उस समय शक्तिहरण को पता चला कि इनको भी छेड़ना मेरा काम नहीं है, ये मेरे से बहुत महान है, यहां से निकल जाना ही अच्छा है मेरे लिए। तो तुरंत वहां से वो निकल पड़े। इसी तरह से एक जादूगर को भी उन्होंने सोना उत्पन्न करके दिया था, जबकि ये जादूगर ने आके अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की थी तिरुमली साई अलवार के सामने। तो भगवान के भक्तों के लिए ऐसी सारी जो शक्तियां हैं इनका कोई महत्व नहीं है। सोना उत्पन्न करना, कोई विभूति उत्पन्न करना, या किसी के मन की बात को जान लेना, या भविष्यवाणी करना बिल्कुल सही ढंग से, ये भक्ति में इसका कोई स्थान नहीं है। केवल जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति, इन चीजों से बहुत प्रभावित होते हैं और उनके मन में यह भ्रांति है कि अगर ऐसे कोई चमत्कार दिखाए तो वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़ चुका है। परंतु ऐसे तथाकथित चमत्कारों से आध्यात्मिक जीवन का कोई संबंध नहीं है। आज ही ये चर्चा एक भक्त के साथ हम कर रहे थे कि दो व्यक्तियों की कल्पना कीजिए। एक है जो छोटे से गांव का आदमी है, अनपढ़ है, गरीब है, अज्ञानी है, वो आता है भगवान कृष्ण के मंदिर में और बड़े भक्ति भाव से यहाँ मंदिर का मार्जन करता है, झाड़ू मार रहा है, पोता मार रहा है मंदिर में। दूसरा है एक विशाल योगी, भौतिक दृष्टि से भी बड़ा विद्वान है और योगाभ्यास के बल पर उसके कई सिद्धियां और शक्तियां हैं। दूसरों के मन के बात को जान सकता है, भविष्यवाणी सही ढंग से कर सकता है, और सोना कहां से उत्पन्न कर सकता है, उसके लाखों लाखों अनुयायी हैं। तो इन दोनों में से आध्यात्मिक दृष्टि में कौन आगे बढ़ा हुआ है? वो अनपढ़ गांव का आदमी, वो आध्यात्मिक है वास्तव में,
क्योंकि भक्ति भाव से वो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आके भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है भगवान की। ये सच्चा आध्यात्मिक जीवन है, न कि केवल कोई तथाकथित चमत्कार दिखाना। लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसे होता है कि जब अज्ञानी लोग भक्तों को आकर छेड़ते हैं तो भक्त भी कभी कभी ऐसे चमत्कार दिखा देते हैं, किसी मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं, केवल भगवान के मान को रखने के लिए, केवल कृपा दिखाने के लिए उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर। तो खैर, तिरुमली से आलवार हालांकि योगाभ्यास भी करते थे परंतु कोई रुचि नहीं थी ये सब चमत्कार दिखाने में। लेकिन सामने वाला व्यक्ति ऐसे था, उसके घमंड को चूर करने के लिए, उसको सही रास्ते में लाने के लिए उन्होंने ऐसे किया। तो उन्होंने देखा कि जब मैं यहां योगाभ्यास में बैठा रहता हूं तो ऐसे कोई ना कोई आके मेरे रास्ते में मुझे अड़चन डालता है, अच्छा है कि मैं कोई एकांत स्थान में जाऊं जहां कोई मुझे देख नहीं पाएगा। तो ऐसे कहीं स्थान में, एकांत स्थान में चले गए और वहां पे अपनी तपस्या कर रहे थे तिरुमली से आलवार। उधर हमारे पहले तीन आलवार पोइग्याय, भूतम और पेय एक साथ इधर उधर सब जगह भ्रमण करते थे दिव्य देशम में। दिव्य देशम पता है ना आपको, जिन स्थानों में, तीर्थ स्थानों में इन 12 अलवरों ने भगवान के दर्शन किए, जहां की अलग अलग भगवान विष्णु के मंदिर हैं, कृष्ण भगवान के मंदिर हैं, उन स्थानों को दिव्य देशम कहते हैं। ऐसे 108 दिव्य देशम हैं जहां के ये अलग अलग अलवरों ने अलग अलग समय पर दर्शन किए, दर्शन करके भाव भोर होकर सुंदर कविताओं की रचना की। उन 108 दिव्य देशम में जो प्रमुख मंदिर हैं उनके विग्रहों की तस्वीर भी हमारे पास है, इसके बाद में सबको दिखाएंगे, तो जिनको देखना है वो देख सकेंगे। तो ऐसे ही एक दिव्य देशम से दूसरे दिव्य देशम इधर उधर तीर्थ स्थानों में घूमते फिरते थे। अचानक जब एक जगह आए तो उन्होंने देखा कि अरे महिसार क्षेत्र के पास, क्योंकि इस समय तिरुमली से आलवार अपने गांव में वापस आ गए थे, वहां देखा कि दूर से देखा उनको एक तेज है, ये तेज कहां से आ रहा है। तो पास में गए और उनकी दिव्य शक्ति से उनको पता चल गया कि यही ये भक्तिसार है, भक्तिसार या महिसार तिरुमली साई आलवार। और सीधा जाकर उनको प्रणाम किया और कहने लगे कि आप ठीक हैं। तो तुरंत जैसे इन तीन आलवारों ने तिरुमली से आलवार को पहचान लिया था, उसी तरह से तिरुमली से आलवार ने भी इन तीनों को तुरंत पहचान लिया है। कहने लगे, हे माधवी ज, हे पद्मज, हे कैरव ज, आप सब कैसे हैं। आपको याद होगा कि इन तीन आलवारों का जन्म इन तीन फूलों से हुआ था, माधवी, पद्म और कैरव। इनका जन्म असाधारण था और फिर इन चारों का मिलन वहां हुआ। और जब भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं। तो परस्पर भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करते रहे भाव भोर हो गए, आपस एक दूसरे के संग में खो गए, उनको पता नहीं चला कैसे समय बीत गया। और आनंद, दिव्य आनंद के सागर के लहरों में झूम रहे थे कृष्ण कथा करते करते, इतना मिठास का अनुभव उनको हो रहा था केवल भगवान की कथा करते करते। और इन तीन आलवरों की आदत ये थी कि जितना भी आनंद क्यों ना मिले एक स्थान पर, वो उस स्थान में ज्यादा समय नहीं रहते थे, वहां का आनंद लूट कर फिर दूसरे स्थान में जाते, फिर अलग जगह, ऐसे भ्रमण करते रहते। फिर ऐसे काफी समय तिरुमले से आलवार के साथ बिताकर वो आलवार चले गए और जगह जगह घूमकर फिर से वहां पर आए, फिर से थोड़ा समय उनके साथ बिताया। इस तरह से चौथे आलवार तिरुमले से आलवार, इन्होंने भी इन पहले तीन आलवारों का संग प्राप्त किया। और इस समय जैसे आपको याद होगा तिरुमले से आलवार की आयु कितनी थी, 700 साल से भी ज्यादा थी। तो इस प्रकार से तिरुमले से आलवार अपने भक्ति में मग्न थे। महिसार में जब वो गए थे तो एक बार उनको तिलक लगाना था, तमिल में तिरुमन कहते हैं उस तिलक को। श्री वैष्णव संप्रदाय में सफेद रंग का तिलक होता है और बीच में लाल रंग लगाते हैं। सफेद रंग दोनों तरफ जो रेखाएं हैं वो भगवान श्री हरि के चरण कमलों के लक्षण हैं, और बीच में जो लाल रंग की रेखा है वो श्रीमती लक्ष्मी देवी को संबोधित को के प्रतीक है। तो उन्होंने देखा कि अरे अब तिलक तो मेरे पास समाप्त हो गया, यहाँ कहीं मिल नहीं रहा। काफी ढूंढा उन्होंने लेकिन उनको तिरुमान्य तिलक नहीं मिला। काफी बेचैन हो गए और सोचने लगे कि क्या होगा, क्योंकि वैष्णव के लिए तिलक ना हो तो बड़े परेशानी की बात है। ये सबको तिलक पहनना चाहिए, जहां भी हम जाएंगे तिलक पहनकर जाना चाहिए, ये हमारी वर्दी है। जैसे बाहर लोग एक पुलिसमैन को, एक पुलिस को आदमी को देखते हैं, पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं, वर्दी से। उसी प्रकार एक भक्त को लोग पहचानते हैं उसके तिलक से, उसके कंठी माला से, जपमाला से, और सबसे महत्वपूर्ण उसके व्यवहार से। केवल वैष्णव की तरह वर्दी नहीं पहननी है, वैष्णव की तरह बर्ताव भी हमारा होना है। तो ऐसे बेचैन अवस्था में तिरुपति बालाजी उनके स्वप्न में आए और स्वप्न में उनको लेकर गए वहां पर और कहे कि यहाँ तुम्हें तिरुमन मिल जाएगा। और जब वो जागे स्वप्न से और वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि वाकई वहां पर ये तिलक या तिरुमन वहां पर था। बड़े प्रसन्नता से फिर उन्होंने ये तिरुमन को अपने पास रखा और रोज हर दिन की तरह तिलक लगाते रहे। अभी आपको याद होगा हम कन्नीकन्नन की बात कर चुके हैं। जो वृद्ध वहां पर पति पत्नी वहां पर आए थे तिरुमले से अलवार के पास, जो कि उनको दूध पिलाया करते थे और जिनको कि तिरुमले से अलवार से आशीर्वाद मिला कि उनको एक संतान हो जाए, वो बच्चा कन्नीकन्नन अब भी बड़ा हो गया था। और कन्नीकन्नन ने सुन लिया कि पास में कहीं पर ये तिरुमले से अलवार हैं, तो उनको ढूंढते ढूंढते गए और उनको ढूंढ निकाला और उनके शरण में आए और उनसे निवेदन किया कि मैं आपके शरण में आना आ गया हूं, केवल आपकी सेवा में करना चाहता हूं, आपकी सेवा में मैं मेरा सारा जीवन बिताना चाहता हूं, तो आपके सेवक के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। तो बड़े आनंद से वो वहां पर रहे। तिरुमले से अलवार की सेवा करते करते कई दिन बीत गए। उस स्थान पर एक बूढ़ी औरत भी आया करती थी और ये औरत वो भी तिरुमले से अलवार के आश्रम में आकर वो बड़े साधारण से साधारण सेवाएं किया करती थी। जैसे कि वो जमीन धोना, झाड़ू मारना, पोता मारना, रंगवल्ली मतलब रंगोली जगाना उस जगह के सामने, और ऐसे कई सालों तक इस बूढ़ी औरत ने सेवा की बड़े भक्ति भावना से, और कुछ पैसा वगैरह कुछ नहीं मांगा। तो काफी समय के बाद तिरुमली से आलवार ने उस महिला से पूछा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैं बहुत एक जवान और सुंदर महिला होना चाहती हूं। तो तिरुमले से अलवार ने कहा तथास्तु, क्योंकि उनकी योगी शक्ति भी थी। तो इस तरह से वो एक तरुण सुंदरी बन गई। अचानक महान वैष्णवों से ऐसे फल मिलते हैं कभी कभी अगर चाहे तो, लेकिन जो बुद्धिमान है वो ऐसे चीजों के बारे में पूछने के बजाय वो क्या चाहते हैं, कृष्ण भक्ति चाहते हैं। लेकिन खैर इस बूढ़ी महिला ने पूछ लिया और तिरुमले से अलवार ने प्रदान कर भी दिया। और इतनी सुंदर थी वो महिला, इतनी सुंदर थी कि सब जगह उसके सौंदर्य की खबर फैल गया। ऐसा ऐसी सुंदर महिला कहीं नहीं थी उस सारे देश में। और स्वाभाविक है कि वहां के जो पल्लव राजा थे, जिनका नाम था पल्लव राजा, और तोंड देश के वो राजा थे, उनके कानों तक खबर पहुंची और उन्होंने अपने आंखों से जब इस महिला को देखा तो बड़े आकर्षित हुए और उसको अपनी रानी बना ली। और कई कई सालों तक दिव्य आनंद, दिव्य मतलब स्वर्गीय, आध्यात्मिक नहीं, स्वर्गीय आनंद का भोग किया इसके साथ में। लेकिन जैसे साल बीत गए, एक आश्चर्य की बात देखने लगे राजा। राजा तो समय के साथ साथ बूढ़े होते जा रहे थे, अब राजा हो या रंक कोई भी हो, काल का प्रभाव कौन रोक सकता है, जितना भी शक्तिशाली धनी व्यक्ति क्यों न हो, आखिर काल उसको दमन करके ही रहेगा। तो खैर ये राजा भी धीरे धीरे बूढ़े होने लगे, लेकिन आश्चर्य से उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी तो जवान की जवानी है, वो बूढ़ी होती ही नहीं है। तो आश्चर्य हो गया उन्होंने पूछा कि क्या राज है, ये बात क्या है, मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मुझे कठिनाई हो रही है अब सब कुछ करने में, लेकिन तुम तो वैसे ही जवान वैसे ही सुंदर हो, क्या बात है। बोला ये केवल भक्तिसार, भक्तिसार कौन, तिरुमली से आलवार, ये केवल भक्तिसार की कृपा है और अगर आपको चाहिए आप भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे रोज भक्तिसार के सेवक कन्निकनन भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, तो आप उनके माध्यम से आप भक्तिसार की कृपा प्राप्त कर सकोगे, आप भी हमेशा के लिए युवक हो सकते हो। अब कौन ऐसे आदमी है जो ऐसे नहीं चाहेगा, केवल भक्त ऐसा नहीं चाहता, और राजा के राजा है, भोग से भोग का अधीन था, तो इसके बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे बताओ जब अगले दिन ये कल जब ये कन्निकनन आएगा तो मुझे बताओ, जब कन्निकनन जब वहां आए तो राजा ने बुलाया कन्निकनन को, कहा कि हमने सुना कि आपके स्वामी भक्तिसार बड़े महान एक संत हैं, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं, तो उनको यहां पर आप ले आओ। तो कन्निकनन ने कहा ये भक्तिसार जो मेरे स्वामी हैं वो ऐसे वैसे कोई साधु नहीं है, वो इधर उधर किसी के पास नहीं जाते हैं, वो एक स्थान में बैठे रहते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते, वो कोई बड़ा राजा भी क्यों ना हो। तो फिर पल्लव राजा ने कहा कि अरे कन्निकनन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम जानते नहीं मैं राजा हूं, तो तुम तो केवल भिक्षुक हो, ठीक है चलो मेरी कोई स्तुति करो, कोई कविता बोलो, मेरा गुणगान करो, मैं राजा हूं। तो कन्निकनन ने तुरंत एक कविता की रचना की तमिल भाषा में, हमको तो तमिल नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जिह्वा जो है ये संसार के किसी साधारण आदमी का गुणगान कैसे कर सकता है भला, ये जिह्वा तो केवल भगवान श्री हरि के गुणगान के लिए बनाया हुआ है। तब और गुस्सा आया और क्रोध आया उस राजा को, बोला कि और मेरा गुणगान करना चाहिए तुम करो, लेकिन और इसी तरह से कन्निकनन ने गुणगान किया। तो ये दुनिया में समस्या हम देखते हैं, चाहे आप अखबार पढ़िए या बाहर समाज में जाइए, सब जगह आप यही देखेंगे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा है, एक दूसरे के पीठ खुजा रहे हैं, आप हमारी प्रशंसा करो हम आपकी प्रशंसा करेंगे, हालांकि प्रशंसा के योग्य नहीं है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी बड़े कठोर भाषा में बोलते हैं कि जो गधे ऊंट की तरह हैं वो दूसरे ऐसे गधे ऊंटों की प्रशंसा करते हैं इस जगत में, मतलब भौतिकवादी लोग अन्य भौतिकवादी लोगों की प्रशंसा करते हैं, हालांकि प्रशंसा करने योग्य केवल भगवान और भगवान से संबंधित चीजें हैं। इसलिए एक सुंदर श्लोक कहानी के रूप में हमने पढ़ा था विष्णुलोक प्रभु के पत्रिका में कि इस श्लोक तो बड़ा सुंदर है, उष्ट्राणाम विवाहेषु गर्दभेन प्रतिजायते परस्परं प्रशंसति अहो ध्वनम ध्वनि अहो रूपम। एक बार दो ऊंटों का विवाह हुआ था और ऊंट के विवाह में सबको बुलाया गया था, सारे जंगल के पशुओं को बुलाया गया था, तो शेर आया सिंह आया सब कुछ आए, पक्षी भी आए और उनमें से गधे भी आए। गर्दभेन प्रतिजायते उष्ट्राणाम, संस्कृत में उष्ट्र मतलब ऊंट, उष्ट्राणाम विवाहेषु, तो ऊंटों के विवाह में कौन है, गर्दभेन प्रतिजायते, गर्दभ संस्कृत में गर्दभ मतलब गधा, तो गधा भी आया। और जैसे गधे भी वहां आए और ऊंटों को देखा तो गधे ने क्या बोला ऊंटों को देखकर, अहो रूपम अहो रूपम, कितना सुंदर दिख रहे हो आप दोनों, वर और वधु कितना सुंदर। आप तो जानते हैं कि ऊंट की कई अन्य योग्यताएं हो सकती हैं, कई प्रशंसा करने लायक चीजें हो सकती हैं कि वो रेगिस्तान में बिना पानी पिए कितने समय चल सकता है, भारी भारी वजन उठा के चलता है दिन ब दिन, ऐसे कई चीजों से प्रशंसा कर सकते हैं, परंतु मेरे ख्याल से ऊंट का सौंदर्य प्रशंसा का कोई विषय नहीं है, ऊंट कोई सुंदर पशु नहीं माना जाता। लेकिन गधे ने प्रशंसा की, अरे कितने सुंदर लग रहे हैं आप वर वधु, तो ऊंटों को, ऊंटों ने जब ये सुना उनको बहुत अच्छा लगा, तो वो गधे की प्रशंसा करने लगे, अहो ध्वनि ही अहो ध्वनि, कितनी सुंदर मधुर आवाज है आप दोनों की, आप जब गाते हो तो कितना मधुर है ये गीत, अमृत के समान लगता है आपका गाना। आप तो जानते हैं कि गधे के अंदर जितने भी अच्छे गुण क्यों ना हो, अच्छे गाने का ये गुण तो उनका नहीं है। गधा जब गाता है तो आपको पता है कि क्या होता है। तो इस प्रकार से ये संसार में जब लोग एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, प्रतिष्ठा के लिए कोई उत्सव अनुष्ठान मनाते हैं, ठीक है इनको बुलाओ, ये बड़े बड़े आदमी है, इनका सम्मान करो, सम्मान उत्सव करते हैं, ऐसे ही अहो रूपम अहो ध्वनि ही, एक दूसरे की प्रशंसा करते रहो, परस्परम प्रशंसति। लेकिन भगवान के भक्त जानते हैं कि संसार के लोगों की प्रशंसा क्या करना, क्या लाभ मिलेगा। ये जिह्वा जैसे कन्नी कन्नन कह रहे हैं केवल भगवान श्री हरि की प्रशंसा के लिए है और कुछ भी नहीं। और जो अपने जिह्वा से भगवान की प्रशंसा नहीं करता, हमें समझना चाहिए कि उसका मुंह जो है वो एक सांप के मुंह की तरह है। सांप का भी जिह्वा होता है या एक मेंढक होता है, उसका भी जिह्वा होता है, लेकिन क्या फायदा है। इसलिए हमारे जिह्वा का उपयोग हमें केवल भगवान और भगवान के संबंधित जो भी चीजें हैं उनकी प्रशंसा हमें करनी चाहिए। तो खैर पल्लव राजा को आया बड़ा गुस्सा कि अरे तुम एक साधारण भिक्षुक तुम कहां और मैं बड़ा राजा तुंड देश का मैं कहां और तुम मेरे साथ ऐसे बातचीत करते हो, ये तुम्हारी मजाल। ठीक है तुम्हें दंड मिलेगा, तुम मेरे राज्य से बाहर, आज से वापस नहीं आना मेरे राज्य में। तो जिस तरह से जब रावण ने विभीषण को बाहर किया था, हालांकि विभीषण हितचिंतक थे रावण के, बहुत अच्छा सलाह दिया था विभीषण ने, लेकिन रावण जो है वो समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए, दुष्ट था रावण इसलिए समझ नहीं पाया। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जिस तरह से एक जहरीले सांप को अगर आप दूध पिलाएं तो उसका जहर बढ़ जाता है, वो और भी द्वेषी बन जाता है। ठीक उसी तरह से अगर एक दुष्ट और मूर्ख व्यक्ति को आप कोई अच्छा सलाह देंगे तो वो व्यक्ति आभारी होने के बजाय वो क्रोधित हो जाता है। तो रावण के साथ ऐसे ही हुआ। जब भरी सभा में विभीषण ने रावण को टोका तो रावण को के अहंकार को चोट पहुंच गई और बड़े गुस्से से रावण ने विभीषण से कहा चले जाओ मेरे राज्य से, आज से इस राज्य में कदम नहीं रखना। तो विभीषण को केवल इशारा चाहिए था बस, क्योंकि रावण का संग बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। विभीषण को तो राम के प्रति इतना आकर्षण हो गया था कि तुरंत वहां से निकले, एक क्षण भी गंवाया नहीं, सीधे अपने दो पार्षदों के साथ निकलकर हवाई पथ से चले गए और श्री राम और लक्ष्मण के बीच में आ खड़े हो गए। खड़े नहीं हुए वैसे, आसमान में थे। फिर वानर सेना के बीच में चर्चा हुई, ये कौन है, जासूस है कि कौन है। आखिर श्री राम ने उनको शरण दिया। ठीक उसी तरह से कनिकंदन ने भी जल्दी से, जैसे ही राजा ने ऐसे कहा, सीधे अपने स्वामी भक्तिसार तिरुमली सयालवार के पास गए और जो भी कुछ हुआ था उसका वर्णन किया कि ऐसे ऐसे घटना हुई है और राजा ने मुझे बाहर कर दिया है। तो भक्तिसार ने सुना, सोचा और कहने लगे कि कनिकंदन अगर तुम जाओगे तो मैं कैसे यहां रह सकता हूं, तो मैं भी जाऊंगा, और अगर मैं जाऊंगा तो मेरे प्रभु यहां जो भगवान है तिरुवेखा जो कि सो रहे हैं वो भी हमारे साथ चलेंगे, और अगर वो जाएंगे तो यहां कुंभकोणम में जितने सारे भी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, देवी देवता भगवान के सेवक हैं, वो भी सब पीछे पीछे जाएंगे। तो उस समय तिरुमल से आलवार तिरुवेखा भगवान श्री नारायण के सामने गए, शेष शयन, शेष के ऊपर शयन कर रहे थे, और उनको जाकर कहने लगे, हे प्रभु, कविता के रूप में उनके मुख से सुंदर कविता निकली और वो कहने लगे कि हे प्रभु चले हमारे कनिकंदन और हम भी उनके पीछे पीछे चले, तो आप भी अपना बोरी बिस्तर बांध लो और हमारे साथ चलते बनो। उनकी बोरी क्या है, बिस्तर क्या है उनकी, शेष। तो जैसे ही भगवान ने श्री हरि ने ये सुना, एक शब्द भी नहीं बोला, क्यों जाना, कहां जाना, कैसे जाना, अरे अभी कैसे जाना, थोड़ा टिकट तो लो, कुछ नहीं, तुरंत उठे बिना एक शब्द बोले अनंत शेष लपेट लिया और चले उनके पीछे पीछे। और जब सारे देवी देवताओं की मूर्ति जो भी कुंभकोणम में थी सब जगह, कहीं गणेश हुए होंगे, कहीं शिवजी होंगे, कहीं दुर्गा माता होंगे, कहीं है कोई वो। उन्होंने देखा अरे हमारे स्वामी चले, कहा हमको छोड़कर चले गए, तो हमें यहाँ रहने से क्या फायदा, तो सब उनके पीछे पीछे चले गए। और जैसे ही सब शहर के बाहर चले गए, देश के मतलब राज्य के बाहर चले गए, तो क्या हो गया, मानो कि एक अंधकार सा छा गया सारे राज्य के ऊपर, अकाल पड़ गया, मानो कि सूरज चांद का उदय नहीं हुआ। सब जगह लोग उदास पड़ गए, कुछ ठीक नहीं चल रहा था, सब गड़बड़ ही गड़बड़ होने लगा राज्य में। और सब जगह ये खबर फैल गई, अरे क्या हो गया क्या हो गया। राजा बड़े चिंतित हो गए, घबरा गए कि अरे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या करूं। अपने मंत्रियों की सभा बुलाई, मंत्रियों ने कहा कि तुरंत जाइए और जिन महात्माओं का अपमान आपने किया है उनकी उनसे क्षमा याचना कीजिए, तब वो वापस आएंगे, तब भगवान वापस आएंगे, देवी देवता वापस आएंगे। फिर दौड़ते हुए राजा पल्लव राजा भक्तिसार और कन्नीकंदन के पीछे गए, बहुत मुश्किल से उनको ढूंढ निकाला और जाके दंडवत प्रणाम किया, कहने लगे क्षमा कीजिए, बहुत हमारी गलती हो गई, आप आइए नहीं तो हमारा राज का नाश हो जाएगा। तो भक्तिसार क्योंकि महान भक्त हैं, उनका हृदय भी बड़ा कोमल था, जब देखा कि कोई ऐसे बहुत पश्चाताप कर रहा है, उसका हृदय भी नम्र हो गया है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। और फिर वो गए तिरुवेखा के पास, भगवान नारायण के पास, और कहने लगे हे प्रभु हमारे कन्नीकंदन वापस चले, और मैं भी उनके पीछे पीछे चला, अब उठाओ अपनी बोरी बस्तर वापस चलो हमारे साथ। फिर से तिरुवेखा नारायण वो भी उठे, एक शब्द नहीं बोला, चुपचाप उठे और चल पड़े पीछे। उनको देखकर सारे देवता भी आ गए, सब लोग राजतुंड देश में आ गए, और फिर से जैसे अच्छी परिस्थिति थी वैसे हो गया। इसलिए उनको तमिल में सोन्न वन्नम सेद पेरुमाल कहते हैं, संस्कृत में उनका नाम है यथोक्तकारी, यथोक्तकारी नारायण, यथा उक्तकारी, जैसे भक्त ने कहा वैसे किया। बोलो चलो मेरे साथ राज्य के बाहर, चले, वापस चलो राज्य के अंदर, वापस आ गए। इसलिए यथोक्तकारी भगवान। इस तरह से तिरुमले से आलवार के सुंदर लीलाएं अपने प्रिय प्रभु के साथ हुई, और इनमें कन्नीकंदन की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार से तोंड देश के राज्य में फिर से सब जगह हरियाली भर गई। जब श्री राम अयोध्या छोड़कर चले गए थे वनवास में, तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि सारे नदियां, सारे सरोवर, कुंड सब सूख गए, सारे वृक्ष जो हैं वो झुक गए, सब जगह सारे फूल मुरझा गए, सब जगह सब कुछ उदास उदास हो गया था। उसी तरह से यथोक्तकारी भगवान के जाने से ऐसे हुआ, लेकिन जब वो आ गए तो सब कुछ फिर से सब जगह हरियाली हो गई, सब कुछ खिल उठा उनके वापस आने के बाद। उसी तरह से हम जान सकते हैं कि अगर किसी देश में, किसी शहर में, किसी प्रांत में, किसी घर में, किसी व्यक्ति के हृदय में अगर भगवान को हमने बिठाया और भगवान को महत्वपूर्ण स्थान देकर उनकी सेवा हमने अच्छी तरह से की, बड़े प्रेम से भक्तिमय सेवा की, तो वो देश, वो प्रांत, वो शहर या वो शरीर खिल उठेगा, वहां सुख शांति होगी, आनंद होगा। लेकिन अगर हमने भगवान के लिए कोई स्थान नहीं रखा तो सब जगह सूखा, ये वो अलग अलग तरह की समस्याएं। आजकल यहाँ सब लोग चिल्ला रहे हैं, विशेष करके कर्नाटक में, सूखा है, सूखा है, अकाल है, लेकिन भगवान को जब स्थान नहीं देंगे तो कहां से हरियाली होगी। इस तरह से हम ये महत्वपूर्ण ये लीला से हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो खैर आगे चल के हम देखते हैं कैसे भगवान भक्तों की सेवा करते हैं। आगे चल के भी भगवान ने तिरुमले से आलवार की सेवा की। भगवान अपने भक्तों की सेवा करने में बहुत आनंद लेते हैं। जितना आनंद भक्तों को आता है भगवान की सेवा करने में, उससे ज्यादा आनंद भगवान को आता है भक्तों की सेवा करने में। और ये है खूबी भक्ति की। भक्ति क्या है? भक्ति भगवान और उनके भक्तों का संबंध है, प्रेम का संबंध। जो भगवान और भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता है, इसको भक्ति कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की कितनी तरह से सेवा की। अभी आपके स्मरण में ऐसे कौन से उदाहरण है, आप पर उदाहरण बोलिए कि कब भगवान अपने भक्तों के सेवक बने या उनकी सेवा की। हाँ? अपने मित्र सुदामा की सेवा की, कैसे की, उनके चरण धोए, चरण को मालिश किया, दबाया, चामर वगैरह से उनको हवा दिया, उनकी आरती उतारी। भगवान अपने भक्त सुदामा के सेवक बने। और कौन कौन से उदाहरण, पांडवों की सेवा कैसे की भगवान ने, क्या कैसे होकर किया, क्या किया पांडवों की, उनका दूत बने वो। राजा को कोई काम करना होता है तो एक दूत को भेजते हैं, आप जाओ उस पड़ोसी देश में जाकर मेरा संदेश दे दो। तो पांडवों के दूत बनकर, उनके सेवक बनकर श्री कृष्ण कौरवों के पास गए थे शांति दूत होकर। और कोई उदाहरण, अर्जुन के सारथी बने, ड्राइवर। अर्जुन कहते बाएं जाओ, बाएं जाते, दाहिने जाओ, दाहिने गए, रुको, रुक जाते। और नंद महाराज के क्या किए, जूते पादुकाएं अपने सर पे लग के लाए। नंद महाराज ने बाल कृष्ण से कहा, बेटा कृष्ण जाओ मेरे पादुकाएं ले आओ। और श्री कृष्ण छोटे थे, नन्हे मुन्ने थे और गए, उतनी शक्ति नहीं थी ऐसा लग रहा था। बहुत कठिनाई से किसी ने किसी तरह से हड़बड़ाते हुए वो पादुकाओं को उठाया, लेकिन उठाकर क्या किया, सर पे रख के किसी न किसी तरह से हड़बड़ाते हुए आए। अपने भक्त के पादुकाएं अपने सर पे, मतलब उनके चरण धूली अपने सर पे ले रहे थे। इससे हम समझ सकते हैं कि भक्तों की चरण धूली कितनी महत्वपूर्ण है। तो भगवान जो है वो इस तरह से भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं। और कोई उदाहरण, ब्रजवासियों की सेवा कैसे की, गोवर्धन उनको शरण दिया, लेकिन और साधारण से साधारण सेवा। हाँ, ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में जब वो जाते थे खेलने को, तो किसी को अपने कंधे में बिठा लिया, किसी ग्वाल बाल मित्र के पैरों को मालिश करते थे। तो इस तरह से कितने सारे उदाहरण हम देख सकते हैं कि भगवान इसमें आनंद लेते हैं कि वो अपने भक्तों की सेवा करें। तो इस सुंदर लीला से भी हम जान सकते हैं यहाँ भगवान ने भी अपने भक्त के आदेश का पालन किया। और कैसे सेवक थे देखिए, गुर 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 को नहीं आ रहे, क्यों अभी बुला रहे हो, आप बाद में जाओ, प्रसाद के बाद जाऊंगा, नहीं, तुरंत पालन। ऐसे सेवक होना है तो ऐसे होना। भगवान खुद अपने उदाहरण से दिखाते हैं कि कैसे सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब सेवा बताया जाए तो मुंह छोटा कर ले और हाय हाय कर ले, या प्रसन्न चित्त हो चेहरे से भी हो लेकिन अंदर बोले अरे क्या हमको ये सेवा दिया, नहीं। तो इस तरह से सेवा में कितना आनंद है ये भगवान खुद अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं। तो एक बार वहां से तोंड देश से तिरुमले से आलवर ने निर्णय किया कि मुझे कुंभकोणम जाना चाहिए। क्षमा कीजिए, अब पहली वाली घटना कुंभकोणम में नहीं थी, वो तोंड देश में थी। तब वो कुंभकोणम गए क्योंकि वहां पर भगवान आरावमुंडन थे। आरावमुंडन ये भी भगवान श्री हरि की मूर्ति है। तो वहां पर दर्शन करने के लिए गए और पेरुम पुलियुर नाम की जगह में वहां वो रुके जो कि रास्ते में आया। और वहां उन्होंने देखा कि एक यज्ञ स्थली के पास में कई ब्राह्मण बैठे हुए थे और वो वेदों का पाठ कर रहे थे। और जैसे ही इन ब्राह्मणों ने तिरुमले से अलवर को देखा तो उन्होंने अपना वेदों का पाठ रोक दिया। वैसे वेदों का पाठ जो है केवल ब्राह्मणों के बीच में होना चाहिए, ऐसे शास्त्रों की विधि है। हाँ, आजकल कलयुग में कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है यह भी एक बात है, कलयुग शूद्र संभव है। और तिरुमले से आलवर जो है उनका जन्म शूद्र से भी नीचे था। पिछली बार हम देख चुके हैं कि तिरुमले से आलवर ने खुद कहा कि मेरा वर्ण क्या है, चारों वर्णों से भी नीचे है। लेकिन व्यक्ति को अपने जन्म से, अपने जाति से, अपने वर्ण से पहचाना नहीं जाता, ये भौतिक दृष्टि है। व्यक्ति को वेद का पाठ पुनः आरंभ करना था तो उनकी स्मृति शक्ति ने उनको धोखा दे दिया, उन ब्राह्मणों ने। जितना भी वो क्यों ना कोशिश करे वो मंत्र उनको याद ही नहीं आए कि अगले क्या वेद पाठ कर, हम कहां रुके थे और वहां से कहां आगे चलना करने लगे। तो उस समय तिरुमले से आलवर ने एक जले हुए चावल के दाने को जो कि अपने नाखून के नीचे था वो निकाला और नीचे जमीन पर पटक दिया और उस समय तुरंत उनकी स्मृति शक्ति वापस आ गई और फिर से वो वेदों के मंत्र बोल पाए। अब ये नाखून के नीचे जो चावल का दाना है उसका क्या महत्व है, क्योंकि वेदों में जो भाग वो पढ़ रहे थे वो राजसूय यज्ञ की विधि का पाठ कर रहे थे। राजसूय यज्ञ में ऐसे बताया जाता है कि जो यजमान होता है उसको पहले तो चावल लेना चाहिए और चावल ले आकर गृहिणी को घर में ही उसको दालन करके फिर उसको अग्नि में अर्पण करना चाहिए, अपने नाखूनों से उसको उसके छाल जो है वो क्या बोलते हैं उसको छिलका उसका निकालना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अपने नाखून के अंदर से वो चावल का दाना निकाला और उस समय ये सारे ब्राह्मण जो है तुरंत उनको पता चल गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, ये तो ब्राह्मण से भी परे है, ये तो बहुत महान संत हैं, हम गलत समझे हैं इसको इनको। तो फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया और क्षमा याचना की, सब उनके चरण कमलों में दंडवत करने लगे और कहने लगे कि हमने आपको समझा नहीं, कृपया आप हमें क्षमा कर दीजिए। फिर तिरुमले से आलोर वहां से निकले और उस गांव में घूमने लगे। जब गांव में घूमे तो उन्होंने देखा सब जगह जाके भिक्षा मांग रहे थे और ब्राह्मणों ने देखा कि जो भगवान की मूर्ति है गांव के मंदिर में वो घूमकर देखने लगे तिरुमले से आलवार को। जैसे कि उडुपी में भगवान कृष्ण ने पूरा पीठ घुमा दिया किसको देखने के लिए, कनकदास, और आज भी वो खिड़की है वहां, उस खिड़की को क्या कहते हैं, कनकनकिंडी। तो आप दरवाजा इस तरफ से जाएंगे लेकिन वो खिड़की इस तरफ है, आप जाके वहां भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए यहां भी ऐसे कहते हैं कि वो मूर्ति घूम घूम कर जहां पे तिरुमले से आलवार थे वहां पे वो देखने लगे। तो इस तरह से सब जगह बात फैल गई सारे ब्राह्मणों के बीच में, अरे तुमने सुना क्या हुआ, भगवान की मूर्ति अपने जगह से घूम गई और तिरुमले से आलवार की ओर देखने लगे। सब जगह बात फैल गई और वहां पे एक यज्ञ हो रहा था। तो यज्ञ में जो प्रमुख ब्राह्मण थे दीक्षित, उनके कानों तक खबर पहुंची तो वो तुरंत आए और बड़े सम्मान से तिरुमले से आलवार को बुलाया, बुलाकर उनको एक सम्मान का आसन दिया, व्यासासन पर उनको बिठाया। लेकिन वहां पर जो अध्वर्य ब्राह्मण थे उनको बड़ा गुस्सा आया कि अरे ये तो शूद्र भी नहीं है और आप इनको इतना ऊंचा स्थान दे रहे हो, ये कैसे है, बिल्कुल ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत निंदा करने लगे। उस समय वो बेचारे दीक्षित को बहुत गुस्सा आया और वह देखकर तिरुमले से आलवार से कहने लगे, मैं क्या करूं, अब मुझे सहन नहीं होता, वो आपकी इतनी निंदा करते हैं। तो तिरुमले से आलवार ने फिर से एक प्रार्थना की भगवान से और कहा कि अभी आपकी बारी है, अभी आपको सिद्ध कर दिखाना है कि आपका सेवक सही है या नहीं। और उस समय भगवान ने एक चमत्कार किया। क्या चमत्कार था, अपने शेष शयन रूप में वो प्रकट हुए और अनंत शेष भी थे और विष्णु लेट रहे हैं, लेटे हुए शयन कर रहे हैं और साथ साथ में वहां पर क्षीर सागर का वातावरण है और श्री देवी और भू देवी भगवान की शक्तियां उनके बाएं और दाहिने ओर हैं, सेवा कर रहे हैं। और ये दृश्य सबने तिरुमले से आलवार के हृदय के वक्षस्थल के जगह में देखा। जैसे ही ये दृश्य सबने देखा सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, सबको बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती की, ये तिरुमले से आलवार वास्तव में बहुत ही महान भक्त हैं, संत हैं। और प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने एक पालकी निकाली ब्रह्मरथ में, ब्रह्मरथ जो कि बहुत बड़ा रथ होता है जिसमें भगवान को ले जाते हैं, उस रथ में वो तिरुमले से आलवार को ले गए यात्रा में। और फिर तिरुमले से आलवार आगे चलते चलते अरावमुदन का दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए गए। ये अरावमुदन जो भगवान का रूप है वो भी शेष नाग के ऊपर शयन कर रहा है। भगवान का इस सुंदर रूप देखकर तिरुमले से आलवार भाव विभोर हो गए और तुरंत उनके मुख से सुंदर कविताएं आने लगी। ऐसे कहा जाता है कि ये जितने भी सारे ज्यादा से ज्यादा कविताएं हैं जैसे नान मुकम तिरुवन दादी और तिरुचंद विरुत्तम, ये इस समय इसकी रचना तिरुमले से आलवार ने की। भगवान का सुंदर रूप देखकर वो केवल वहां दिव्य आनंद में झूमने लगे। और उसी समय जब उन्होंने देखा कि भगवान आराम से शयन कर रहे हैं, तो काव्यात्मक रूप में, कविता के रूप में वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप तो सो रहे हैं, प्रभु जो कि कावेरी के तट पर सोए हुए हैं, उठिए। और जैसे उन्होंने कहा, भगवान जो कि लेटे थे उठने लगे, उठे। और फिर उन्होंने कहा तिरुमले से अलवार ने, अरे प्रभु जो कावेरी के तट पर सोए हुए थे, अब जो उठे फिर से सोइए। और फिर से वो सोने लगे। और आज भी ये एक ही मूर्ति है भगवान की, अरब मुदन, जो आधे उठे हुए हैं आधे सोए हुए हैं। उठकर जैसे मानो बीच में रोक लिया अपने आप को, वो आसन है उनका, वो मुद्रा है उनकी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान और भक्तों के बीच में कितनी सुंदर लीला हुई, प्रेम का आदान प्रदान किस तरह से हुआ। तो तिरुमले से अलवार इसी तरह से जगह जगह घूमकर अपने भक्ति करते रहे। 2300 साल और रहे, कुल मिलाकर 4700 साल की आयु उनकी थी। और फिर वापस अपने प्रिय भगवान श्री विष्णु के पास चले गए। जैसे पिछली बार चर्चा की थी, तिरुमले से अलवार भगवान श्री कृष्ण के चक्र के अवतार माने, अंश अवतार माने जाते हैं। और चक्र की तरह ही उनका प्रचार था कि विष्णु ही परम है, अन्य सब उनके सेवक हैं। तिरुमले से अलवार की जय। हरे कृष्णा। तो अभी हम दर्शन करेंगे।
हरे कृष्णा।
जो तिरुमले सही अलवार है ना, उनका एज 4700 ऐसा था, मतलब जो यहाँ बता द्वापर युग के अंत में, तो कृष्ण और इनका कुछ मिलन जुलन हुआ होगा यानी।
नहीं, ऐसे तो कोई वर्णन नहीं है। कृष्ण इधर थे, पूर्व पश्चिम भारत में, और ये द्रविड़ देश में थे, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। लेकिन कृष्ण का मिलन दूसरे तरह से हुआ उनका, भगवान के दिव्य देशमों में हुआ, उनके भक्तों के माध्यम से हुआ। और कोई प्रश्न? अभी चार अलवारों की कथा हो गई, अभी नम्मा अलवार की कथा अगली बार से होगी। अभी बच्चों का कार्यक्रम है, बच्चों का है, तो बच्चे मंदिर के बच्चे अभी भक्ति गीत श्लोक इत्यादि का कार्यक्रम हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे।